نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روح القرآن آج ہم اس میں پارہ نمبر 29 تبارك الذي کریں گے بہت ہی خوبصورت پارہ ہے جس میں سورة ملک سورة قلم سورة الحاقہ سورة المعارج سورة نوح جن مزمل مدثر قیامہ دہر اور مرسلات ہے پورے پارے کو اگر ایک نام دے دوں تو دعوت اللہ اور اس کی حکمتیں جتنی بھی صورتیں میں نے بولی اگر ان سب کا ایک ربط دے دوں جب بھی کسی کو اللہ کے رستے کی دعوت دیں گے تو ترتیب کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا جائے اس کے دل میں توحید کو راسخ کیا جائے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اس کا ٹاپک سورۃ ملک میں ہے اس کے بعد دوسری چیز جو کسی بھی نئے انسان کو دی جا سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے تعلق یہ ہے ٹاپک سورۃ قلم کا جس کو سورۃ نون بھی کہتے ہیں تیسری چیز ایمان بالآخرہ اور یہی تین مضامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکی دور میں لوگوں کو بتائے اس کا جواب ہے سورۃ الحاقہ میں قیامت پھر نیکسٹ تھنگ کیا ہوتی ہے کہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کی باتیں کی جائے اس کو خوبیوں کا تعریفوں کا ایک ایسا منظر پیش کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کتنا خوبصورت انسان بناؤں اس کا تذکرہ ہم دیکھیں گے سورۃ معارج میں اب جب یہ سب کریں گے تو پھر کوئی عملی تصویر بھی ہونی چاہیے تو پھر سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے داعی دین کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے کہ جنہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو اللہ سے جوڑا پھر اس کے بعد سورۃ جن آتی ہے جو حقیقت میں اس بات کا سبق ہے کہ جس کو بات سمجھ آ گئی پھر وہ بہت وقت ضائع نہیں کرتا ایک ہی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے کچھ باتیں سنی اور جا کر اپنی قوم کو منذر بن کے ڈرانے لگے جس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ کچھ باتوں کے لیے تو انسان بہت کچھ سیکھے گا پھر بولے گا خود نہیں بول سکتا تو کسی کی بولی ہوئی بات آگے کر کے وہ داعی اللہ بنے گا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنات کی طرح سن کر اپنی اپنی قوم کو جا کر بات بتانی ہے پھر اس کے بعد سورت مزمل اور مدثر ہے یہ ایک جوڑا ہے مزمل سورت میں قیام اللیل کی بات ہے کہ رات کی کچھ گھڑیوں میں اگر اللہ کے سامنے انسان ایک مجرم بن کر کھڑا ہو جائے تو اس سے اگلے دن بات اچھی نکلتی ہے رات کی کچھ گھڑیاں رب کے ساتھ مناجات میں تو سورۃ مدثر میں قیام النہار ہے اللہ کے نبی کو سورۃ مزمل میں رات کی کچھ عبادت کا حکم دیا اور آپ کا حال کیا ہو گیا کہ آپ ایک ایک آیت پہ پوری رات گزارتے تھے ایسا قرآن پڑھتے کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی اور اس کے بعد جب سورۃ مدثر کو دیکھے قم فانذر اور اس پر تو پھر اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر 23 سال کھڑے ہی رہے کہ جب تک رات کا کچھ وقت اللہ کے آگے نہ کھڑا ہوا جائے دن میں بندوں کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں آتی اور اس کے بعد پھر سورۃ قیامہ میں آپ کو نفس لوامہ سے متعارف کرایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اگر اس چوکی دار یا اس گارڈ مین کو انسان مرنے نہ دینا یا اگر انسان اپنے نفس کو اپنے پر خود ہی ایک گارڈ بنا لے تو پھر غلطیاں تو ہوں گی انسان ہے نا کمی بیشی تو ہوگی اس رستے میں بھی لیکن انسان واپس آ جائے گا اور پھر آخری دو صورتیں سورۃ دہر اور سورۃ مرسلات دہر میں جنت کے تذکرے ہیں کثرت سے اور مرسلات میں جہنم کے تو گویا کہ آج آپ اور میں اس بارے میں ایک مکمل دعویٰ کورس کرنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سورۃ ملک ہے 30 آیات ہیں پہلی 2 آیات سلسلہ موت و حیات کی حکمت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے کنگڈم ہے ڈومینین ہے کائنات کی اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے کیوں یہ سب بنایا آپ کو مجھے ادھر کیا دینے والا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم اس نے زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے اور اب نوٹ کریں پہلے لفظ موت ہے پھر زندگی ہے हमारी अक्ल क्या कहती है, अल्लज़ी खलकल हयाता वल मौत। या आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि हम मौत से ज़िंदगी पे आए हैं, अब ज़िंदगी से फिर मौत और फिर एक हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। फ़कैफ़ा तकफ़ुरूना बिल्लाह, सूरह बकरा में हम यह आयत पढ़ चुके। क्यों पैदा किया ज़िंदगी और मौत को? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे काम करता है। तो सबसे पहले तो उस तबारक को देखते हैं, बारिका बारका मुबारक हो, एक ख़ास सिफत है। और अल्लाह ताला ने सूरत फुरकान के शुरू में भी यही अंदाज़ इख्तियार किया, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दी। यहाँ तबारक एक साथ कह दिया कि तुम्हें अल्लाह ताला इस दुनिया में भेज रहा है। इस लफ्ज़ के अंदर हमेश की दवाम पाकिजगी पाई जाती है, बहुत बाबरकत का लफ्ज़ आप कह सकते हैं इसके मानी में, अजमत बुलंदी जमाओ खैर और भलाई बढ़ोतरी, ये सब लफ्ज़ आते हैं। हम जब लोगों को कहते हैं ना मुबारक हो, ईद मुबारक, और अब तो माशाल्लाह लोग पता नहीं क्या क्या मुबारकें देने लगे, जुमे की मुबारक और फुला फुला, सहाबा करम तो ऐसे नहीं करते थे। लेकिन आप जब भी आज के बाद किसी को ये कहेंगे ना कि मुबारक हो, तो साथ इन 6-7 लफ्ज़ों को जहन में रखिएगा, एक दुआ भी है और अल्लाह ताला की रहमतों का इजहार भी है। और दूसरी चीज़ जो मेरे आपसे मुतल्लिक है इस आयत में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी दलील, मौत दुनिया में और ज़िंदगी आखिरत में। क्यों है ये तमाशा रोज़ो शब? ताकि वो देखे अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से अहसन अमल करता है। ये नहीं कहा कि अक्सर अमला, तुम में से कौन ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं चांदी 1 किलो भी हो लेकिन सोना चंद ग्राम भी हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हमारा दीन कसरत को नहीं उसकी क्वालिटी को कहता है, यानी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आप देखिए चीज़ जितनी कीमती होती जाती है ना, उतनी उसकी इकाई छोटी होती जाती है। गंदम अगर मनों के हिसाब से तुलती है, चावल मनों के हिसाब से तुलता है, तो आप उससे नीचे आ जाइए तो ड्राई फ्रूट्स नट्स किलोस के हिसाब से तुलते हैं, और नीचे आते जाइए तो आप देखते जाएंगे कि सोना ग्रामों में और हीरा या डायमंड कैरेट्स में। अल्लाह ताला ने आपको मुझे अहसन अमल की बात की, सवाल क्या है कि अहसन अमल क्या होता है? दो शरायत हैं, नंबर एक इखलास के साथ हो, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए हो, नीयत ठीक हो, खोट ना हो, किसी किस्म का उसमें कोई इंसेंटिव अपनी ज़ात को फ़ायदा देने का ना हो, और तरीका नबी सल्लम का हो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, करना अल्लाह के लिए और करना नबी के तरीके से है। फिर आप देखिए कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक खुशी से काम जो किया जाए वह अहसन अमल होगा। हर उस काम से बचना जिससे बचने का हुक्म दिया गया, खूबसूरती से आगे बढ़कर अच्छे काम करना, और एक और चीज़ नोट कीजिए कि हर लम्हा बेहतरी की कोशिश करना। हम सब इसको देखें तो एक बात मुझे जो समझ इस आयत के साथ आती है, हम सब एक कमरा है इम्तिहान में। यहाँ से आप ज़रा दो रवैये सामने रखिए, आप ही के ऊपर लेकर बता दूँ। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उस वक्त आपका मूड क्या होता है, उस वक्त तैयारी क्या होती है, उस वक्त फिक्र क्या होती है, क्या पहनना है, कैसा मेकअप करना है। लेकिन जब आप किसी बड़े संजीदा इम्तिहान को देने के लिए घर से निकलते हैं तो आपका मोड एग्ज़ाम मोड बन जाता है। पार्टी के मोड से पहले तो आप भी पूछें और कोई भी आपसे पूछे कि क्या पहनोगी, मेकअप कहाँ से करना है, हाँ आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी पूरी नहीं है, हाय अभी तो इतने सवाल खोले भी नहीं थे, और कोई आपसे पूछता है अच्छा क्या पहन के जा रही हैं आप, चलो आओ ना आपका मेकअप करवा दूँ, अच्छा ज्वेलरी, तो आपको अजीब लगेगा। बस ये दो रवैये हैं। जो लोग दुनिया को फन प्लेक्स समझते हैं वो लेयर मोड में, हर वक्त उनके पास फन फ्रॉलिक मौज मस्ती हल्ला गुल्ला गपशप पर्पसलेस वॉन्डर ब्लाइंडली। लेकिन जो इस दुनिया को कमरे इम्तिहान समझते हैं वो संजीदा हैं। अब देखिए कमरे इम्तिहान के साथ ही कुछ चीज़ें हम सब के लाशौर में आएंगी। नंबर एक, वक्त की कमी का एहसास। दूसरी बात है जो आता है वो उंडेल दूँ, घबराहट। 3 घंटे हमारी ज़िंदगी के भी 3 ही घंटे हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा। कि ऐसा तो नहीं कि बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। तो ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ी हकीकत है। आपके मेरे इसके रिजल्ट पे हमारा आखरत का मामला होगा। फिर इसके बाद आगे अल्लाह की तख्लीक हर नक्शे पाक है, आयत 3 to 5। अल्लज़ी खलक़ सब असमावात इन्ती अबाका, सब असमावात इन्ती बाका, मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत। तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई नक्स दिखता है? फर्जिल बसरा हल तरा मिन फतूर। जाओ आसमानों पे एक नहीं दूसरी नज़र डालकर देखो। सुम मर्जिल बसरा करतैन यनकलिब इलैक अल बसर, आपकी नज़र वापस आ जाएगी खासियन थकी हुई। वह हुआ हसीर ना मुराद, यानी खासियन ना मुराद और हसीर थकी हुई। ये आसमान कितना पुराना है, कभी आपको इसके नीचे से गुजरते हुए वो फीलिंग आई जो किसी भी शहर के अंदरून छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए आती है? 100 साल के बाद कहते हैं बिल्डिंग खतरनाक हो जाती है, गिरा दो, ये छतें किसी वक्त गिर सकती हैं। हमारे अपने घर जब बनते हैं उस वक्त और उसके 10 साल बाद या 20 साल बाद, उसके स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अल्लाह का आसमान आज भी एवर न्यू है। सूरज देख के लगता ही इतना पुराना है, चांद, हवाएं, बादल, समंदर। तो बस एक जुमला लिखिए, जिस तरह अल्लाह की कायनात एवर न्यू है ना, इसी तरह से अल्लाह का कुरान भी एवर न्यू है। आप 10 दफ़ा पढ़ लें, 11वीं दफ़ा भी आपको नया लगेगा। 1 साल दौरे कुरान करते हैं, लगता है सब कुछ आ गया है, अगले साल करेंगे और चीज़ें खुल जाएंगी। और पहली दफ़ा भी देखें ना, तो इंसान को कभी नहीं भी चीज़ दिखती, जैसे हमें शॉपिंग करते हुए पहली नज़र में हर चीज़ भा जाती है, लेकिन जब घर लाते हैं फिर कहते हैं क्या ज़रूरत थी, देखो इसमें ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं है। तो आपको मुझे इसमें सबक क्या मिला कि इस आसमान दुनिया को जिस पर अल्लाह ने सितारे टांक दिए, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है बल्कि वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, ये तीसरा मकसद है सितारों का, तो पीछे हम पड़ चुके, यानी ये शैतानों को भगाते हैं, वही की हिफाजत। तो इससे क्या पता चला कि जिस चीज़ में खूबसूरती हो ना, उसमें कुछ अफादियत भी होनी चाहिए। बस हमारे घरों में कुछ मशीनें होती हैं कामकाज के लिए, वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर, लेकिन साथ ही हमारे कुछ डेकोरेशन पीसेज होते हैं, उनका क्या मकसद है? सिर्फ खूबसूरती। अल्लाह ने दोनों को जोड़ दिया, आप बेकार चीज़ों को सजाने की बजाय उनको कारामद बना लें। ज़िंदगी का यही खुलासा है। आगे जहन्नम के जोश और गज़ब की बात है, आयत 6 से 9 में, वलिल्लज़ीन कफरू भी रब्बी है मज़ाब जहन्नम। जहन्नम कितनी बड़ी हकीकत है, लेकिन आज लोग इससे आंखें बंद करते हैं। आप देखिए इन आयात को पढ़कर, तो वाकई वो खौलती हुई एक हंडिया या जोश लेता हुआ वो बॉयलर, कभी आप स्टील मिल के करीब से गुजरे हैं या आपको कभी इत्तफाक हुआ हो जाकर किसी बड़ी फैक्ट्री और मिल को देखने का, बड़े बड़े बॉयलर चलते हैं। अल्लाह कहते हैं ये जहन्नम भी खौल रही है, और जब वो उसकी आवाज़ भाई इज़ा उल्कु फ़ीहा समीउ लहा शहीकम वही तफूर, जब उसमें फेंके जाएंगे ना, तो वो उसका चीखना और चिल्लाना देखेंगे। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गज़ब के मारे वो फटी पड़े। और जब कभी उसमें एक फ़ौज डाली जाएगी, सवाल करेंगे उसके दारोगा। बस आप इस पे नज़रें टिका लें। आयत 8 का आखिरी टुकड़ा, अलम यातिकुम नज़ीर, ये जहन्नम के गार्डमैन सिक्योरिटी मैन क्या पूछ रहे हैं, क्या कोई डराने वाला नहीं आया था, कोई नबी, कोई पैगंबर? नहीं, हम तो उससे बाद में आए थे। अच्छा, तो कोई अल्लाह वाला, कोई उस्ताद, कोई इमाम, कोई मुहद्दिस, कोई मेंटोर, कोई नहीं आया जिसने तुम्हें ज़िंदगी में डराया हो? जवाब सुनिए, कालू बला, कहेंगे क्यों नहीं, आए तो थे, का जाना नज़ीर, फिर क्या हुआ, फ़कज़्ज़बना, हमने जुटला दिया, हम डिनायल फॉर्म में थे, क्या कहा हमने, हमने कहा कोई नहीं, अल्लाह ने चीज़ नाजिल की, ये तुम तो हो ही भटके हुए दूर की गुमराही में, या तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो, यानी हिदायत से दूरी इख्तियार की, क्योंकि हिदायत पाने की 2 सूरतें आयत 10 से 12 में दिख रही हैं। आप और मैं इस आयत को बिल्कुल अपनी आंखों में बसा लें, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. ये दो लफ्ज़ है, हम सुनते और हम अक्ल इस्तेमाल करते हैं. मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, हम जहन्नमियों में से ना होते. फातरफू बिज़म्बिहिम, अक्सर हम क्या कहते हैं, बस वो अपने गुनाहों का इतराफ करेंगे, हालांकि यहाँ गुनाहों नहीं है, ज़म्ब वाहिद, वो अपने एक गुनाह का ही इतराफ करेंगे. और वो क्या है, अल्लाह को उसका हक ना दिया, या अल्लाह और उसके रसूल को उसका हक ना दिया, और जहन्नमी बन गए. इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब, वो लोग जो अपने रब को बिन देखे उससे डर गए. बिन देखे रब से डरना ये क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के डर से लोगों के सामने या छुपकर काम करते हैं, लोगों से छुपकर नेक अमल करते हैं. यानी जब आपको इस बात का यकीन हो ना कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो आप कोई गलत हरकत करने का सोचते भी नहीं. तो जिसको समी और अल बसीर और अल अलीम की मौजूदगी का एहसास हो जाए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग हैं कि नहीं. वो लोगों में अच्छा और अकेले में बुरा तो नहीं होगा. फिर आगे अल्लाह कुर्बत का एहसास दिलाते हैं 13 से 14 में, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया. वासिर रो कौलकुम बिजहर भी इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर. जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है, मैं नहीं तुझे जानती, बता क्या बात है. बेटी माँ से कुछ छुपाए ना तो माँ भांप जाती है. समझदार माओं की नज़रें बेटियों के ज़ुबानों पे नहीं, उनके एक्शंस और उनके चेहरे के तासुरात से पहचान जाती हैं कि बच्ची अपने घर में खुश है कि नहीं है. तो जिस रब ने वो माँ दी है, क्या वो नहीं जानता कि बताओ तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है? तो लिहाजा ताल्लुक़ बिल्ला मजबूत करना है. फिर आगे ज़मीन अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत का मज़हर है, आयत 15 से 18. ये ज़मीन भी अल्लाह की एक अजीब सी मखलूक है, कैसे मनों टनों वज़न अपने ऊपर रखे हुए, और बिल्कुल कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं. और अल्लाह ने बता दिया कि हुवल्लज़ी जाला लकुमुल अर्दा ज़लूला, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को हमवार बना दिया. ये जो लफ्ज़ है ना ज़लूल, ये गाय वाले वाक़े में भी आप पढ़ कर आए, सूरत बकरा में, ताबे नरम, अमन वाली, रिस्क फराहम करने वाली, झुकी हुई, इज्जत देने वाली, फरमावरदार, सब अपने अंदर समेटे हुए. आप सोचिए अगर ये ज़मीन ऐसी ना होती जैसी है, तो क्या दुनिया का निज़ाम चलता? नहीं चलता. आगे हम पढ़ेंगे 30वें पारे में भी, बल्कि 29वें पारे में, कि अम्वातम जिंदा और मुर्दा दोनों को ज़मीन समेट लेती है. फिर आगे अल्लाह ताला हर चीज़ का निगेबान है, आयत 19, अवलम यरौ इलत तौईर इलत तैरी फौकहुम साफात, क्या तुमने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा, कैसे सफ़े बांध कर चलते हैं, उड़ते हैं, कभी पर खोलते हैं कभी बंद करते हैं. ये तो बताओ कि मा युमसिकुहुन्न इल्ला रहमान, कोई नहीं थामे हुए उनको मगर रहमान. कभी आपने बर्ड्स की फॉर्मेशन देखी है फ्लाइंग में, वी शेप में चलते हैं, आगे एक लीडर होता है, फिर उसके पीछे दो, फिर दो, फिर दो, और वो खुलते जाते हैं. इसके ऊपर बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हैं जो शेयर किए जाते हैं क्लासेस में, कि इस तरीके से हवा का दबाव कम हो जाता है. शुरू वाले लोग ज़रा सी मेहनत कर लेते हैं, पिछले तो ऐसे ही चलते जाते हैं. अल्लाह हमें टीम वर्क और लीडरशिप और उसको फॉलो करना, इसके बेनिफिट्स बताते हैं. और परिंदे कभी रास्ता नहीं भूलते, बल्कि उन परिंदों में से अगर कोई बीमार हो जाए या थकने लगे ना, तो बाकी झुंड जब आगे जाता है ना, तब एक पीछे रहे, तो अगलों में से दो और उसके साथ आके तीन की वी बना लेते हैं. कोई परिंदा अकेला नहीं उड़ता. लिख लीजिए, बड़े कामों के लिए, उड़ने के लिए आपको अपने साथ लोगों की ज़रूरत होती है. फिर माबूदा ने बातिल की बेबसी और लाचारगी है, आज 20 से 22 में, कि कोई है जो तुम्हारी मदद करे. जो लोग सारी ज़िंदगी इन्हीं को बुलाते रहे, वो ज़र अफसोस करेंगे. फिर आयत 23 में अल्लाह ताला का एक एहसान है कि उसने तुम्हें पैदा किया, उसने तुम्हारी समात और बसारत बनाई, तुम्हारे दिल बनाए, कलीलम मा तशकुरु, मगर तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो. ये लफ्ज़ कलील भी बड़ा अजीब है. दुआ करें अल्लाह में कलील लोगों में करते हैं, और थोड़े लोग ख़ास होते हैं. شکر گزار ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، پھر روزے قیامت منکرین کی صورتیں بگڑ جائیں گی، آیت 24 سے 27، وہاں کے عذابوں کو دیکھ کر، وہاں کے معاملات کو دیکھ کر منکرین ہکے بکے رہ جائیں گے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون. اور جب ان کے سامنے قیامت کے مناظر آئیں گے، فلما رأوہ زلفتاً سیئت وجوہ الذین کفروا، سیاہ پڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جو انکار کرتے تھے. کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو طلب کرتے تھے، بار بار نبی کو آ کر کہتے تھے قیامت کب آئے گی، اچھا لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو. تو اللہ کہتا ہے بولو. پھر اللہ کی قدرت ہے کسی کو سزا دے یا رحم کرے، آیت 28 سے 30، یعنی ایک خوبصورت سی سوچ پہ صورت مکمل ہوتی ہے. کل ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ اور یہ انداز کیا ہوتا ہے، غور کرو. ان اہلکنی اللہ، اگر میں وہ ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، یعنی اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. کیا پتہ چلا کہ ساری قدرت اللہ کی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستوں میں نکلے، جنہوں نے اس کی مرضی کی زندگیاں گزاری، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو احسن درجے پہ پورا کیا، تو اللہ ان پہ ان کو سزا نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا. اور آخر میں کہا کہ اللہ اگر تمہارے پانی کو خشک کر دے تو کوئی ہے جو جاری پانی لے آئے. آج بھی دنیا میں ڈیزرٹس ہیں، دنان افریقہ کا ملک، کہ جہاں بالکل مٹی کے بسکٹ کھاتے ہیں بچے، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ڈراؤٹ، قحط، فونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، تھوڑے تھوڑی جگہوں پہ اگر کہیں پانی ہے تو اس کو جا کے چوستے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. اور ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. آج کے بعد جب بھی ٹیپ کھولے نا، اس آیت کو سوچئے گا، ضائع نہیں کرنا، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے بھری ہوئی صورت تھی.